बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 21 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं बेली राजपूता की मलका, जिसकी मुसनिफा है निमरा अहमद। ये किताब आपकी खिदमत में कत्तबा ऑडियो लाइब्रेरी की तरफ से पेश की जा रही है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 21। सफा नंबर 201। महरून निसा। मोमो का पूरा नाम महरून निसा था, मगर मैंने तमाम उम्र उसे महरून निसा कहकर नहीं पुकारा। मैं उसे मोमो कहता था, सिर्फ मोमो। फिर भी मैंने अपनी कहानी का नाम महरून निसा रख दिया है, क्योंकि ये मेरी दास्तान नहीं है। ये तो मोमो की कहानी है और महरून निसा की भी। महरून निसा यानी ये औरत की मोहब्बत की कहानी है, मगर ऐसे आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मेरी बात समझने के लिए आपको मोमो की कहानी सुनना पड़ेगी। मेरी और मोमो की जिंदगी ऐसी ही थी जैसे शमा और परवाने की होती है। आपने कभी शमा के गिर्द परवाने को एक दायरे में घूमते देखा है? बहुत चाहने के बावजूद भी परवाना उस मदार से निकल नहीं पाता, रास्ता नहीं बदल पाता, और जब शमा बुझ जाती है तो वो निढाल सा होकर गिर जाता है। जिया शमा का होता है या परवाने का, मैं फैसला नहीं कर पा रहा। मुझे तो ये इल्म भी नहीं कि परवाना हम दोनों में से कौन था। शायद मैं था या फिर शायद मोमो थी। मोमो को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो महरून निसा हुआ करती थी। उसके बाद वो मोमो बन गई थी और फिर मैंने उसे महरून निसा कभी पुकारा ही नहीं, बल्कि मैंने तो उसे कभी भी नहीं पुकारा। इसीलिए उसको महरून निसा कहते हुए अजीब सा लग रहा है। ये तर्ज तखातुब बहुत अजनबी सा है, बल्कि अब तो मोमो भी इतनी ही अजनबी है जितना ये नाम। मोमो के कान में अजान मैंने दी थी, उसको पहला बोसा भी मैंने दिया था। उसको नर्स के खुरदरे हाथों के शिकंजे से अपने बाजुओं में सबसे पहले मैंने ही उठाया था। मेरी जगह उस वक्त हैदर को होना चाहिए था, क्योंकि मोमो उसकी बेटी थी, मगर हैदर के बहुत से मसाइल थे। वो हफ्ता पहले एक इकोनॉमिक फॉर्म में शिरकत करने के लिए कनाडा गया था। उसे मोमो की पैदाइश से पिछले रोज ही आ जाना था, मगर बर्फबारी के बाइस फ्लाइट्स मुलतवी हो गईं और वो वहीं फंस गया। अपनी जगह वो भी बहुत तड़पा था, क्योंकि मोमो उसकी और सोनिया की पहली औलाद थी। हैदर के कजन और बेहतरीन दोस्त होने की हैसियत से आंटी ने मुझे फोन करके बुलवा लिया था। हसान, मुझे इस वक्त हैदर की जरूरत है और वो नहीं है, मगर तुम भी मेरे लिए हैदर ही की तरह हो। वो परेशान थी, इसीलिए अपना पहला जॉब इंटरव्यू बुलाकर मैं दौड़ा चला आया और फिर तमाम इंतजाम अपने हाथ में ले लिए। जब नर्स ने हैदर की नौमौलूद कंबल में लिपटी बेटी मेरे हवाले की, तो एक मुसर्रत बख्श एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैंने झुककर बच्ची को प्यार किया और फिर अस्पताल के सफेद और ग्रे मार्बल से बने कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर खड़ी आंटी के पास उसे ले आया। आंटी, ये हैदर की बेटी है। उस सोई हुई बच्ची को मैंने आंटी की गोद में डाल दिया। उन्होंने वालिहाना अंदाज में बच्ची का माथा चूमा, मगर यकदम सर उठाकर मुझे देखा। उनकी खुशी से तिमतिमाते चेहरे पे तफक्कुर की लकीरें उभरी थी। सोनिया कैसी है हसान? मैंने एक गहरी सांस ली। वो ठीक हो जाएगी। मेरा मतलब था कि वो ठीक नहीं है। आंटी परेशानी से उठ खड़ी हुई। मैंने उन्हें तसल्ली देने के लिए लब खोले ही थे कि मेरी पुश्त पर किसी ने कहा, सोनिया के हस्बैंड कौन है? मैं चौंक कर पलटा। मेरे सामने सफेद ओवरऑल में मलबूस सपाट चेहरे वाली लेडी डॉक्टर खड़ी थी। वो यहां नहीं है। सोनिया कैसी है? میرے لہجے میں بے قراری تھی، سوری وہ بچ نہیں سکیں، انہوں نے بتایا اور میں اپنی جگہ سن سا ہو کر کھڑا رہ گیا۔ آنٹی بے اختیار اپنی من چاہی بہو کے لیے رونے لگی تھی۔ میں نے ایک طرح ہم آمیز نگاہ ان کی باہوں میں سکون سے سوئی بچی پہ ڈالی۔ مجھے اس پر بے حد ترس آیا تھا، بچے سے اس کی ماں چھن جائے اس کا اندازہ مجھ سے بہتر کون کر سکتا تھا۔ میری ماں بھی 3 برس کی عمر میں مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ فرق یہ تھا کہ مومو کی ماں کو اللہ نے اس سے دور کر دیا تھا اور میری ماں کو ایک مرد نے، یعنی ان کے دوسرے شوہر نے۔ اس کے بعد مجھے کسی عورت کی محبت نہیں مل سکی تھی۔ میرے اندر اس بات سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مومو کے اندر بھی پیدا ہو، مگر میں کیا کر سکتا تھا۔ حیدر بمشکل جنازے پر پہنچ سکا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی اور سونیا کی لو میرج تھی۔ یہ بات مجھے اور بھی دکھی کر گئی۔ حیدر کو اپنا ہوش نہیں تھا، آنٹی تعزیت کے لیے آنے والوں کو بکتا رہی تھی۔ کسی اور کی مدد نہ حاصل ہونے کے باعث میں اکیلا باہر کے بہت سے کام نمٹا رہا تھا۔ ایسے میں کسی کو بھی اس ایک دن کی بچی کا خیال نہ آیا جو پتہ نہیں کہاں تھی۔ اس وقت بھی میں اپنی نگرانی میں مائی حلیمہ سے کچن سے برتن نکلوا رہا تھا جب دفتن ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز نے مجھے چونکایا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کوئی مہمانوں کا بچہ ہوگا، حلیمہ نے پلیٹیں نکالتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ میں یکدم بے چین سا ہو کر رہ گیا۔ وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ حلیمہ کو کچن میں چھوڑ کر میں آواز کے تعاقب میں باہر آ گیا۔ رونے کی آواز پینٹری کے ساتھ بنے اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ میں اسٹور روم کا نیم ہوا دروازہ پورا کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے سلور کی ایک پیٹی پر کمبل میں لپٹی حیدر کی روتی بیٹی مجھے دکھائی دی تھی۔ دکھ، حیرت اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں نے بچی کو اٹھا کر تھپکا مگر وہ روتی رہی۔ میں نے اس کو باہر جا کر آنٹی کے حوالے کیا اور نوکروں کو ایک یادگار ڈانٹ پلا کر بچی کی نگہداشت پر لگا دیا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بھوکی تھی۔ اس رات حیدر کو پہلی دفعہ اپنی بیٹی دکھائی گئی۔ حیدر نے کسی فلمی باپ کی طرح بیوی کی موت کا ذمہ دار بیٹی کو ٹھہرا کے قبول کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سونیا کی ڈیتھ کے 6ویں دن جب میں حیدر کی طرف گیا تو آنٹی نے مجھ سے پوچھا، حسان، حیدر کی بیٹی کا نام کیا رکھیں؟ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھے بغیر سوچے سمجھے میرے لبوں سے مہر النساء نکلا تھا۔ مہر النساء؟ شاید آنٹی کو نام بیکورڈ لگا تھا۔ اس بچی کو محبت کی ضرورت ہے آنٹی، اور مہر کا تو مطلب ہی محبت ہوتا ہے، میں یوں ہی کہتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ نام بالکل ٹھیک ہے، حیدر سے میں نے پوچھا تو وہ آپ کی مرضی کہہ کر لا تعلق ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے اور سونیا نے اپنے بچے کے لیے کتنے نام سوچے ہوں گے۔ وہ یکدم افسردہ نظر آنے لگی۔ حوصلہ کریں آنٹی، ایک دم بہت زیادہ تنہا ہو جانے والی آنٹی کو تسلی دینے لگا اور پھر نامحسوس طریقے سے میرا حیدر کے گھر آنٹی کی دلجوئی کے لیے آنا جانا بڑھتا گیا۔ وہ حیدر کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ حیدر نے خود کو ہر شے سے الگ تھلگ کر لیا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اب اس کے کام میں گزرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ سگریٹ پیتا دکھائی دیتا، حالانکہ سونیا کی ڈیتھ سے پہلے وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ مت کیا کرو، اسموکنگ نقصان دے گی۔ ایک دن جب وہ لان میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا تو میں نے اسے ٹوکا۔ وہ 26 سال کا تھا، مجھ سے 4 سال بڑا، مگر ہماری بے تکلفی بلا کی تھی۔ کبھی میں تمہیں منع کرتا تھا اور اب تم مجھے، اس نے سر جھٹکا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے حیدر، تم آنٹی اور مہر کو وقت نہیں دے رہے ہو، ان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم یوں ہی سگریٹوں کی طرح خود کو پھونکتے رہو گے تو नॉर्मल लाइफ की जानिब आना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे समझाने पर उसने बात में सर हिला दिया, लेकिन मुझे इल्म था वो मेरी बात नहीं मानेगा। मोमो और हैदर मेरी जिंदगी की कहानी के वो किरदार थे जिन्हें कभी मेरी बात नहीं मानना थी। मेरी जिंदगी में एक और किरदार मेरे अबू थे जिनका 2 वर्ष पहले इंतकाल हुआ था। बहन भाई थे नहीं, मैं अकेला रहता था। इन दिनों नौकरी की तलाश कर रहा था। जिंदगी के बारे में मेरे प्लान वाजे थे, एक जबरदस्त किस्म की जॉब ढूंढकर 4-5 बरस खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना और फिर किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके हंसी खुशी रहना। ज्यादा मसाइल मेरे होते नहीं थे, सो रोज शाम अपने घर से 10 मिनट के वॉक पर मौजूद हैदर के घर जाकर अपनी आंटी से एक कप चाय पीने का वक्त खुद ब खुद निकल आता था। इसी तरह एक आम सी शाम जब मैं आंटी की तरफ आया तो वो लाउंज में रखे सोफे पर बैठी अपने पोती के मुंह में चमचों से पानी डाल रही थी। कैसे हो हसान? मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक मेहरबान तबस्सुम बिखर गई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बस मेहर की जानिब से परेशान हूँ। अपनी गोद पर लेटी मेहर पर झुकी, वो तश्वीश से कहने लगी, रात से इतना तेज बुखार है, अब मेरी उल्टी सीधी तिब्बी इमदाद से शुक्र है कुछ कम हुआ है, वरना इतने छोटे बच्चे की तो कोई दवाई भी नहीं होती। अरे इतनी प्यारी सी बच्ची को क्यों बुखार चढ़ गया? मैं उठकर मेहर के करीब आया और प्यार से उसका गाल छुआ। वो अपनी दादी को देख रही थी। मेहर, ओए गंदी बच्ची, इधर देखो। मेरे पुकारने पर भी वो दादी को ही देखती रही। उसने पिंक कलर के फ्रॉक के साथ हमरंग ऊनी जुराबे पहन रखी थी। मेहर इधर देखो। मैंने उसे मुतवज्जा करने की नाकाम कोशिश की। मेहर गंदी बच्ची, मोमो। गैर इरादी तौर पर मेरे लबों से मोमो निकला। उसने एकदम अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें घुमाकर मुझे देखा। मोमो दरअसल उस नॉवेल की हीरोइन का नाम था जो मैं पिछली रात पढ़ रहा था। मेहर को देखते हुए बेख्तियार ही मेरे लबों से वो निकला और उस दिन से उसका निक नेम बन गया। फिर हमने कभी उसे मेहर नहीं पुकारा। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, उसमें हैदर की बहुत शबाहत थी, खुसूसन उसके ऊपर वाले होंठ का कटाव तो हू बहू हैदर की तरह था, मगर भूरी आंखें उसने सोनिया की चुराई थी। जब मोमो ने पांव पांव चलना शुरू किया तो उसका मशवला मिट्टी खाना बन गया। आंटी उसके लिए दुनिया भर के बेहतरीन खिलौने लाती थी, मगर मोमो फिर भी किसी बिल्ली की तरह रेंग कर लॉन से बाहर निकल जाती और लॉन में क्यारी से मिट्टी निकाल निकाल कर खाती। मुझे जब भी वो मिट्टी खाती दिखाई देती मैं उसे डांट देता, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मना तो नहीं हुई, अलबत्ता मेरी गाड़ी पोर्च में दाखिल होते ही देखकर वो मिट्टी खाना छोड़कर तेजी से घुटनों पर चलती हुई अंदर रूपोश हो जाती। उसका ख्याल था कि मैं उसे सिर्फ डांटता हूँ, इसीलिए जब उस शाम मैं हैदर की तरफ आया और वो मुझे फ्रॉक में मलबूस क्यारी में बैठी नजर आई तो मैंने कदरे नरमी से उसे पुकारा, मोमो। मिट्टी खाते उसके छोटे छोटे हाथ एकदम रुके। उसने गर्दन उठाकर कदरे फासले पर मुझे खड़े देखा तो उसकी मुड़ी हुई पलकों वाली भूरी आंखों में एकदम बेतहाशा खौफ से मटाया। मट्टी छोड़कर तेजी से लुढ़कती हुई वो अंदर की जानी भागी थी। मैं बेख्तियार हंस पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। आंटी अंदर ही बैठी थी, मैंने उसको जा लिया। आंटी ये मिट्टी खा रही थी। अरे हसान आओ बेटा, उन्होंने एक नजर कारपेट पर बैठी मोमो पर डाली जो अब उनके सोफे का बाजू पकड़कर खड़ी होने की कोशिश में बार बार नीचे गिर जाती थी। अब बस मैं अब कहां भाग सकती हूँ इसके पीछे, जरा इधर उधर हुई तो ये बाहर निकल जाती है, इसका मुंह धुला कर लाने के बाद आंटी कह रही थी। मैं हंस दिया, फिर हैदर के मुतालिक इस्तफसार किया। हैदर के पास घर के लिए कोई वक्त नहीं है, उसका तमाम वक्त अपने ऑफिस के लिए है। घर आता है तो कमरे में बैठकर ऑफिशियल वर्क करता रहता है। उसने तो इन तमाम महीनों में मोमो की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी। उन्होंने गोद में बैठी मोमो की जानिब तासुफ से देखते हुए कहा, उसके माथे पर आए भूरे बाल संवारे। मेरी समझ में नहीं आता एहसान, मेरे बाद मेरी मोमो का क्या बनेगा? मेरी मोमो तो रुल जाएगी। उनकी निगाहों और लहजे में शराब छलक रहा था। उस वक्त तो मैंने आंटी को तसल्ली दी, मगर उस रात मुझे आंटी की बातें बहुत याद आई थी। मैंने आपको बताया था ना, मेरी मम्मी मुझे 3 बरस की उम्र में छोड़कर चली गई थी। उनके दूसरे शौहर मुझे नहीं रखना चाहते थे, सो मैं सारी जिंदगी बाबा के साथ रहा। माँ की मोहब्बत की कमी ने मेरे अंदर जो खलिश छोड़ी थी, वक्त गुजरने के साथ साथ खला बन गई थी। और इसी खलिश और जात के उन्हीं अंधेरों पर ही तो मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक आप मेरी कहानी पूरी सुन नहीं लेंगे। आपको मेरी मंतक, मेरी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। अपनी माँ की जुदाई के बाद मेरी थ्योरी ये थी कि इस दुनिया की हर औरत बेवफा होती है। औरतें हमेशा आखिर में छोड़ जाती हैं, बेवफाई करके तन्हाई कर जाती हैं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मगर आपको मेरी बात समझने के लिए मेरी पूरी कहानी सुनना पड़ेगी। किधर होते हो तुम हसन? अब तो हैदर की तरह तुम्हारे पास भी माँ को देने के लिए चंद मिनट भी नहीं। मुझे देखते ही आंटी ने बेहद शाकी अंदाज में कहा, पूरे 4 महीने बाद शक्ल दिखाई है अपनी। सॉरी आंटी, मैं कराची में था, वहां पर मसाइल ही इतने थे कि फंसकर रह गया। उनके अपनायत भरे शिकवों ने मुझे काफी शर्मिंदा कर दिया था। मोमो काफी बड़ी हो चुकी थी, चलती फिरती नजर आ रही थी, और तो और अब वो बोलती भी थी, अलबत्ता मुझसे अभी तक डरती थी। उसे देखकर मैंने एक दोस्ताना मुस्कुराहट उछाल दी, मगर वो खामोशी से अपनी बड़ी भूरी आंखों से मुझे देखती रही। मैं आंटी से बातों में मसरूफ हो गया। इतने अरसे बाद मिल रहा था, कुछ मैं सुना रहा था तो कुछ वो। बोलते बोलते मेरा हलक खुश्क हो गया, तो मैंने सोचा कि जरा बात मुकम्मल करके पानी पी आऊं। मानी, मोमो की आवाज मेरी समाज से टकराई। मैंने रुककर बेहद चौंकते हुए अपने दाएं जानिब देखा। मोमो अपने नन्हे मुन्ने हाथों में पानी का गिलास थामे खड़ी थी। मुझे हैरत का झटका लगा। मोमो, मैंने पानी नहीं मांगा, मैंने हैरानी से पूछा। उसे मेरे लिए पानी लाने को किसने कहा था? आपको पाश लगी है, वो अपनी तोतली जबान में पूछ रही थी। इतनी सी बच्ची ने अंदाजा कर लिया था कि मुझे प्यास लगी है, और वो दौड़कर मेरे लिए पानी ले आई थी। मैं बेहद शौक था। थैंक यू मोमो, मैंने गिलास उसके हाथ से थाम लिया। मेरी मोमो बहुत केयरिंग है, आंटी ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखा। जैसे ही हैदर थका हारा घर आता है, मोमो फौरन उसको पानी पिलाती है। मुझ जैसे अपने आप से वास्ता रखने वाले बंदे को एक बहुत छोटी लड़की का ये ख्याल देखकर बहुत हैरत हुई थी। पार्ट 21 यहाँ पर इस्तेमाल पर होता है।